विधान, आपके मन में जो भी शंकाएं हैं उसे दूर करने की कोशिश कीजिए, लेकिन नित्या को गलती से भी उनसे दूर करने के बारे में मत सोचिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे, उनके दिल में प्यार और आंखों में इज्जत खो देंगे, जिसकी एक झलक आप अभी देख चुके हैं। मिस्टर शेरगिल को नित्या का आई हेट यू याद आया और उनका चेहरा सख्त हो गया। उनकी तनी भौहें देखकर दादू के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। अब इसके लिए भी आप मानव को जिम्मेदार मत ठहराने लगना, उस मुंडे की कोई गलती नहीं है, यहाँ गलत आप हैं। अगर आपकी बेटी आपको ऐसे बोलकर आपसे नाराज होकर गई है तो उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। अपनी गलती को स्वीकार करना सीखिए और बेवजह मानव के लिए अपने मन में कड़वाहट भरना बंद कर दीजिए। याद रखिए, वो इस शेरगिल खानदान का होने वाला दामाद है। उम्मीद करते हैं कि आप ये बात याद रखेंगे और दोबारा उनका अपमान करने से पहले, उनके बारे में कुछ भी बोलने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आगे चलकर अपने दामाद से आपके रिश्ते खराब रहें या आपकी बेटी आपसे दूर हो जाए। डैड, मिस्टर शेरगिल ने इतना कहा ही था कि दादाजी ने अपना हाथ आगे कर दिया और वो बोलते बोलते रुक गए। दादाजी गंभीरता से बोले, हमने आपको अपना फैसला सुना दिया है। बहुत सोचने समझने और हालात को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है। अगर आपको हमारे इस फैसले से एतराज़ है तो एक ठोस वजह दीजिए। बताइए हमें कि मानव में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से आप नित्या और उनके रिश्ते के खिलाफ हैं। अगर आप ये साबित करने में कामयाब हो गए कि मानव नित्या के लिए सही जीवन साथी नहीं है और आपने हमें इस बात पर विश्वास दिला दिया, तो हम खुद बिट्टो को मानव से दूर कर देंगे। लेकिन याद रहे, अपनी जिद पूरी करने में ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिसके लिए आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़े। और जब तक आपको वो कमी नहीं मिल जाती, आप नित्या और मानव से दूर रहेंगे, उनके बीच आने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर इस बार आप हमारे खिलाफ गए, आपकी वजह से हमारी बिट्टो को तकलीफ हुई, तो हम उन्हें लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। आप जानते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, और अगर हमने ऐसा किया तो नित्या हमारे खिलाफ नहीं जाएगी और आप कभी दोबारा अपनी बेटी से नहीं मिल पाएंगे। दादाजी ने ज़बरदस्ती दांव चला और मिस्टर शेरगिल चारों खाने चित कर दिया। उनकी इस धमकी के आगे वो इतने बेबस और लाचार हो गए कि चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाए। दादाजी अपनी बात कहकर वहां से चले गए। मिस्टर शेरगिल काफी देर तक वहीं खड़े दादाजी की बातों के बारे में सोचते रहे, फिर वो अपने स्टडी रूम में चले गए। सामने टेबल पर ही एक फाइल रखी थी जिस पर मानव का नाम लिखा था। अपनी चेयर पर बैठते हुए मिस्टर शेरगिल ने उस फाइल को देखा और उसे उठाकर उसके पेजेस को पलट पलट कर देखने लगे। उस फाइल में मानव के बारे में सारी डिटेल्स लिखी थी और सच था कि उसके बारे में सब पता करवाने के बाद भी उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके बेसिस पर वो उसे गलत साबित करके नित्या से दूर कर सकें। वो एक बेहतरीन इंसान था, शानदार कैरेक्टर का मालिक था। बस एक कमी थी कि वो गरीब था, और उसकी इस एक कमी ने उसकी सारी खूबियों को ढक लिया था। खासकर मिस्टर शेरगिल के केस में तो ऐसा ही था। मिस्टर शेरगिल काफ़ी देर तक उन पेजेस पर लिखे वर्ड्स को घूरते रहे। दिमाग में आज जो हुआ वो सब घूम रहा था। उनके एक्सप्रेशन बिगड़ते जा रहे थे और एक पॉइंट आया जब उनका चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने वो फाइल टेबल पर फेंकी और गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, मानव देशमुख, तुम्हें नित्या की ज़िंदगी से जाना ही होगा। मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी कभी तुम जैसे मिडिल क्लास लड़के से नहीं करवाऊंगा। मैं साबित करूंगा कि तुम नित्या के लायक नहीं हो, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मिस्टर शेरगिल के चेहरे पर मिस्टीरियस से एक्सप्रेशन थे और आँखें खतरनाक अंदाज में सिकुड़ गई थीं। पता नहीं अब वो क्या करने वाले थे। नित्या अपने रूम में तकिए में मुंह छुपाए रो रही थी जब किसी का स्नेह भरे हाथ ने उसके सर को सहलाना शुरू किया, और नित्या बिना ये देखे कि कौन है तकिया छोड़कर उस शख्स की गोद में सर छुपाकर सिसकने लगी। उसे यूं रोते देखकर दादाजी की आंखें नम हो गईं। पता नहीं तुम्हारा बाप कब ये समझेगा कि धन दौलत और पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंसान की पहचान उसकी प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस से नहीं होती। कब समझेंगे वो आपको इन सब चीज़ों की नहीं, प्यार की ज़रूरत है, वो प्यार जो आपको उस घर में मिलता है। कब समझेंगे वो कि आपकी खुशी मानव से जुड़ी है। हमने अपने तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की, फिर भी मन में एक डर है कि कहीं अपनी जिद में वो आपकी खुशियां न तबाह कर दे। दादाजी ने अपने आंसू पोंछे और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर नित्या यूं ही रोती रही, फिर उठकर बैठ गई। रोने से उसका पूरा चेहरा लाल होकर आंसुओं से भीग चुका था। आंखें और नाक तो टमाटर जैसी लाल हो गई थी और वो अभी भी सिसक रही थी। डैड मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आई लाइक हिम, बट डैड हमेशा उसकी इंसल्ट कर देते हैं। वो बहुत अच्छा है, डैड क्यों नहीं समझते? वो क्यों बार बार उसे पुअर कहकर उसे ह्यूमिलिएट करते हैं? लास्ट टाइम भी उन्होंने उससे बहुत रूडली बिहेव किया था और मानव मुझसे इतना नाराज हो गया था, मुझसे ठीक से बात भी नहीं की थी, और आज फिर से डैड ने उसे गुस्सा कर दिया। अब वो मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। मैं कैसे मनाऊंगी उसे? नित्या बोलते बोलते सुबक रही थी और उसके आंसू देखकर दादाजी का दिल कट कर रह गया था। उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। चुप हो जाओ गुड़िया, तुम कहोगी तो हम मानव से बात करेंगे, माफ़ी भी मांग लेंगे और उन्हें समझाएंगे कि विधान की बातों का बुरा ना माने, उनका गुस्सा आप पर ना उतारे।
ये तो विधान की सोच है जिसे हम एक दो दिन में बदल तो नहीं सकते, लेकिन उसकी गलती का खामियाजा आप क्यों भुगते? हम मानव से बात करेंगे, वो आपसे नाराज नहीं होंगे। अब रोना बंद करो, आपके आंसू से ज्यादा तकलीफ हमें दुनिया में और कोई चीज नहीं देती। हम हमारी बिट्टू को हमेशा हंसते मुस्कुराते देखना चाहते हैं। अगर आपकी खुशी मानव से है तो हम विधान को कभी आप दोनों के बीच नहीं आने देंगे। आप शांत हो जाइए, दादाजी प्यार से उसे समझा रहे थे। नित्या थोड़ी शांत हो गई, उसने उनके सीने से सर बाहर निकाला और भीगी पलकें उठाकर उन्हें देखते हुए बोली, नहीं दादू, आप मानव से बात नहीं करेंगे और उससे माफी भी नहीं मांगेंगे। आपने तो कुछ भी गलत नहीं किया, मेरे दादू मेरे लिए किसी के आगे झुके मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं खुद मानव को मना लूंगी, वो ज्यादा गुस्सा नहीं करता, बस बात नहीं करता और बोलता है कि अगर डैड नहीं चाहते तो मैं उससे मिलने ना आया करूं। लेकिन मैंने भी उसे बोल दिया है कि मुझे उसकी औराई के साथ अच्छा लगता है, इसलिए मैं तो मिलने आऊंगी। मैं इतने दिन से उससे मिलने नहीं गई ना, अब जाऊंगी और उसे मना लूंगी। आप टेंशन मत लो, बस आप डैड को हैंडल कर लेना। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं मानव से मिलने गई हूं तो वो बहुत गुस्सा होंगे। ठीक है, आप जब भी उनसे मिलने जाएं बस एक बार हमें बता दीजिएगा, हम सब संभाल लेंगे। विधान अब आपको या मानव को कुछ नहीं कहेगा, आप उनकी चिंता हम पर छोड़ दीजिए और बस खुश रहिए। दादू ने अपनी हथेलियों से उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को पोंछा और उसके सर को चूम लिया। नित्या ने कुछ सोचा और मुस्कुरा दी। इनाया रोज जैसे निकलने की तैयारी में थी। आजकल वो रिसेप्शन एरिया में काम कर रही थी, अभी भी वो वहीं थी। कान पर फोन लगा था जिसे उसने एक हाथ से पकड़ा था और दूसरा हाथ पर्स में कुछ ढूंढने में बिजी था। हो गया तुम्हारा काम? मैं बस पहुंचने वाला हूँ। हाँ बस हो गया, जब तक तुम पहुंचोगे मैं बाहर आ जाऊंगी। श्योर ना, मुझे आवाज से तुम परेशान लग रही हो। अगर तुम्हें टाइम लगने वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वेट कर लूंगा। तुम रिलैक्स होकर अपना काम पूरा कर लो, फ्री हो तो आ जाना।
मैं फ्री ही हूँ, अभी रिसेप्शन पर मैं अकेली हूँ। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट वॉशरूम से आती है मैं निकल जाऊंगी। आर यू श्योर ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इनाया, जिसका पूरा ध्यान पर्स पर था, थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड भी लग रही थी। उसने पर्स छोड़ा और गहरी सांस ली। मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरा लॉकेट मैंने पर्स में डाला था, वही ढूंढ रहे थे लेकिन मिल ही नहीं रहा, बस इसलिए थोड़ा परेशान थी, और कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सा लॉकेट? वही जो आई ने मुझे दिया था, आज पता नहीं कैसे टूट गया। वो तो नीचे गिरा तो मैंने देख लिया, वरना खो जाता। मैं सोच रही थी घर जाते टाइम रास्ते में ज्वेलर को ठीक करने के लिए दे देंगे, इसलिए ढूंढ रही थी। अब कार में बैठकर ढूंढ लूंगी। रखा तो मैंने पर्स में ही था, तो उसी में होगा शायद। अभी हड़बड़ी में हूँ इसलिए नहीं मिल रहा। ओके, तो तुम आ जाओ, हम रास्ते में उसे ठीक होने के लिए देकर घर चलेंगे। बाय। दूसरे तरफ से कायरव ने भी बाय कहा और इनाया ने कॉल कट कर दी। हाय इनाया। अचानक ही एक आवाज़ इनाया के कानों में पड़ी। उसने चौंकते हुए सर घुमाया। जैसे ही नज़र सामने खड़े शख्स पर पड़ी उसके एक्सप्रेशन अजीब से हो गए। टू बी कंटिन्यूड।